आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारत लिखे समय सार
नमः समय साराए और क्या चकार से चित्त भावाए भावाए सर्व भावान कर
26 से 30वीं गाथा तक की प्रकरण पर चर्चा चल रही है। शाम को जो अपन ने चर्चा आरंभ की थी वो बात यहाँ खड़ी हुई थी कि यदि तीर्थंकर भगवान की स्तुति जो देह के आधार पर की जाती है वो व्यवहार स्तुति है तो उनके आत्मा के गुणों का वर्णन तो निश्चय स्तुति होनी चाहिए और 29वीं गाथा में ऐसा लिखा भी है केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन, केवली भगवान के गुणों का स्तवन ही वास्तव में केवली का स्तवन है। तो जैसे उदाहरण में कहा था कि नगर का वर्णन वो राजा का वर्णन नहीं है, निश्चय से व्यवहार से तो है, क्योंकि राजा की विशेष योग्यता के बिना, राजा के सही प्रशासन के बिना नगर की व्यवस्था भी सही नहीं हो सकती है। इसलिए व्यवहार से तो वो राजा की विशेषता है, फिर भी जो राजा के औदार्य आदि गुण है अंदर में वो राजा की विशेषता है। ऐसे ही जिस देह में तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है वो देह भी उनके सातिशय पुण्य का फल है, इसलिए वो अच्छा देह का अच्छा होना भी उनके पवित्र परिणामों की सूचना को देता है। फिर भी वास्तव में तो जो आत्मा के गुण हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, उनकी आधार पर भगवान की प्रशंसा स्तुति करना ही वो वास्तविक स्तुति है, ऐसा 29वीं गाथा में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी साहब ने जब भक्ति का प्रकरण लिया है 7वें अध्याय में तो वहाँ भी ऐसा कहा कि बाह्य विभूति शरीर आदि के अनुसार उसको कर्ता धर्ता आदि कहना, ये तो सब जैसे अन्य को ईश्वर को कर्ता आदि कहते हैं वैसे ही हमारा भी कहना होगा, ऐसा लिखा क्या नहीं लिखा, उनकी सर्वज्ञ वितरागता आदि गुणों के आधार पर उनकी बात करें तो ही भगवान की सच्ची स्तुति होगी। भाग्य से बात ऐसी है कि वहाँ पर निश्चय शब्द का प्रयोग नहीं होकर वो दूसरा शब्द का प्रयोग है, सो तत्सम केवली थुनदी, वह तत्स शब्द का प्रयोग है और वहाँ भी वो लिखा कि सच्ची स्तुति होगी, निश्चय स्तुति नहीं लिखा। तो फिर समय सार की 31वीं गाथा 31, 32 और 33वीं जिनमें निश्चय स्तुति का वर्णन करने वाले हैं, वो निश्चय स्तुति क्या है कि विस्तार से तो बात आगे आएगी लेकिन संक्षेप में तो ये नक्की है ना कि वो निर्विकल्प है, निर्विकल्प आत्मा के अनुभव रूप है, उसमें किसी तीर्थंकरों के गुणों के स्मरण रूप नहीं है, न आत्मा सिद्ध गुणों के स्मरण रूप है और न देहासिद्ध गुणों के स्मरण रूप है। तो 29वीं गाथा में तो ऐसा बोले कि केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन, देखा ना आपने अभी गुजराती में भी है, वे केवली गुण ने स्तवे परमार्थ केवली ते स्तवे, है ना, केवली गुण ने स्तवे, केवली के गुणों के आधार पर स्तुति करे सब भाई, ऐसा लिखा क्या नहीं लिखा। तो फिर 31वीं गाथा में केवली के गुणों के आधार पर स्तुति करनी चाहिए थी, ये शाम को प्रश्न मैंने यहाँ छोड़ा था और आपसे कहा था कि आप विचार करके आना और इसका उत्तर अभी आरंभ होता है। पसंद भाई नहीं है कि चले आगे उत्तर समझने के लिए एक बात आपको जरा पहले समझनी पड़ेगी कि चार प्रकार का जो व्यवहार होता है वो क्या है, तो उसका उत्तर जल्दी समझ में आएगा। 10 मिनट में ही समझाऊंगा कि वैसे व्यवहार में दो प्रकार का होता है, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत और असद्भूत व्यवहार में ये अंतर है कि पर पदार्थों के साथ जो संयोग का ज्ञान कराए उसका नाम है असद्भूत व्यवहार में, और जो अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में अंदर ही अंदर बात करे लेकिन भेद करके समझाए तो उसका नाम है सद्भूत व्यवहार। तो इन दोनों में एकदम उल्टापन हो गया। पर के साथ अभेद बताए वो असद्भूत व्यवहार, और अपने में भेद बताए वो सद्भूत व्यवहार। तो देखो, अभेद बताने वाला निश्चय भी होता है, ये भी पढ़ा होगा पंडित जी साहब धर्मचंद जी, अभेद से निश्चय और भेद से व्यवहार, वो यहाँ मत लेना। यह तो पर के साथ अभेद है और वो तो अपने में अभेद है। शरीर को आत्मा का कहना तो शरीर पर है ना, और आत्मा स्व है, और इन दोनों को अभेद कहना, इसका नाम है असद्भूत व्यवहार। स्त्री पुत्रादिक को अपना कहना, इसका नाम है असद्भूत व्यवहार। स्त्री पुत्रादिक को अपना कहना, इसका नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार, और शरीर को अपना कहना, इसका नाम है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। है दोनों असद्भूत, क्योंकि ये पर पदार्थों के साथ आत्मा को एक में कहते हैं, लेकिन एक उपचरित और एक अनुपचरित। उपचरित अनुपचरित का भेद कैसे किया, शरीर को अनुपचरित क्यों कहना, और स्त्री पुत्र को, मकान को, जायदाद को उपचरित क्यों कहना, इसके पीछे कोई न्याय है, इसके पीछे कोई ऐसा साधन है कि जिससे हम जान सकें कि इसको उपचरित कहना, इसको अनुपचरित कहना। तो है कि जिस, बहुत सरल भाषा में कहता हूँ, माताओं बहनों को भी समझ में आएगा, कि जिसका जन्म से लेकर और मरण तक का साथ है पक्का, एक मिनट को भी देर नहीं होगा, उसको बोलते हैं अनुपचरित। और जिसका बीच में ही वियोग हो सकता है, उसका नाम है उपचरित। सरल भाषा में है, अभी शास्त्रीय भाषा भी बताऊंगा, पहले इसे समझ लें। जैसे अपने देह का संयोग है, तो अपना जब से जन्म हुआ, इस पर्याय की बात है, मनुष्य पर्याय की बात, अभी प्रकाली आत्मा की बात नहीं। तो अगर भाई, तो जब से लेकर जब तक हम मर नहीं जाएंगे, तब तक एक मिनट को भी इनका एक क्षेत्रावलय संबंध टूट सकता है, वियोग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप मानिक भाई बम्बई में बैठे रहे और शरीर यहाँ आ जाए, कि शरीर बम्बई में रह जाए और आप यहाँ आ जाए, नहीं हो सकता ना। तो एक क्षण को भी वियोग संभव नहीं है। तो ये हो गया अनुपचरित। अब स्त्री पुत्र के साथ तो ऐसा नहीं है, रमेश भाई बम्बई में रह गए, आप यहाँ आ गए, क्यों पत्नी घर रह जाए, हम यहाँ आ जाए, पत्नी यहाँ आ जाए, हम घर रह जाए, इनका एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। और इतना ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी का स्वर्गवास हो जाए, अपने यही रह जाए, अपना स्वर्गवास हो जाए, पत्नी यही रह जाए। तो जन्म मरण का भी जिनका साथ नहीं है, तो इनको बोलते हैं उपचरित। शास्त्रीय शब्द इसके लिए संश्लिष्ट और असंश्लिष्ट। बोलने में ही कठिन है तो समझने में भी कठिन होंगे। संश्लिष्ट माने नजदीक का, पास का, और असंश्लिष्ट माने दूर का संबंध। तो नजदीक का और दूर का कैसे हिसाब लगाएं? तो कहते हैं कि जिनकी जुदाई पहचानने में सरलता हो वो दूर का, और जिनकी जुदाई पहचानने में कठिनता हो वो पास का। दोनों एक से ही लगे बिल्कुल, हम पहचान ही नहीं पाए। तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद का वियोग इसी भव में होता देखा जाता है। तो हम लोगों को समझाएंगे, स्त्री पुत्र तेरे नहीं है, इसका तेरा कोई संबंध नहीं है, तो उसकी आसानी से समझ में आ सकता है। तो वियोग होता देखा है ना, अपना नहीं हुआ तो पड़ोसी के यहाँ हुआ है। पति रह गया, पत्नी चली गई, पत्नी तेरे रह गई, पति रह गई, नहीं ऐसा होता तो विधवा और विधवा क्यों होते। लेकिन ये देह के मामले में ऐसा नहीं है। हम कहते तू अलग है और शरीर अलग है, तो ये देह के बिना चलता फिरता शरीर हमने देखा नहीं है, आत्मा के बिना मुर्दा हो जाता है ना। और शरीर के बिना अभी आत्मा दिखाई नहीं देती है, होंगी तो जरूर लेकिन हमारी आंख में ही ताकत नहीं है। तो इनका देव जन्म से लेके मरण तक कम से कम अपने में हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनके साथ का भेद विज्ञान जरा अपेक्षाकृत कठिन है। इसलिए जो लोग परभव नहीं मानते हैं उन्हें समझाना कठिन है। अपने आप लिखा कि मर के सोच चला गया, वहां मर चला गया तो अपने को तो ख्याल में आता है, लेकिन जो मानते हैं कि जन्म से पहले कुछ था ही नहीं, मरण के बाद कुछ रहेगा ही नहीं, उनके लिए कठिन है। तो ये है असद्भूत व्यवहार। कौन कौन? स्त्री पुत्र मकान जायदाद और शरीर, इन्हें और आत्मा को एक कहना है। इनको आत्मा का कहना, आत्मा को इनका कर्ता धर्ता भोक्ता कहना, इसका नाम है असद्भूत व्यवहार। तो दो प्रकार का हो गया, लेकिन दोनों का नाम एक नाम क्या है? असद्भूत व्यवहार। ये असद्भूत व्यवहार, इसे असद्भूत नाम क्यों दिया? क्योंकि बात तो सच्ची है नहीं। भूत माने होना, सद्भूत माने सच्चा होना, और असद्भूत माने सच्चा नहीं होना। माने वास्तविक में तो शरीर और आत्मा एक है नहीं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद अपने वास्तव में तो है नहीं। इतने कानून के हिसाब से जरा विचार करना अपनी बात को गंभीरता से। यदि गवर्नमेंट का कानून है कि जायदाद अपने रजिस्ट्री की तो अपने नाम है, तो कल कानून बना देगा रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब बेकार, सब गवर्नमेंट की, तो एक मिनट में अपनी नहीं रहती है ना। बोलो 10 मकान है हमारे पास, सबकी रजिस्ट्री है, हमने पेमेंट किए थे, और कहिए एक मकान से ज्यादा कोई नहीं रख सकता, तो 9 मकान गवर्नमेंट के एक मिनट में हो जाएंगे ना। ये बिल्कुल नकली, कितने नकली है। हमारे पास हमारे बाप दादाओं का दिया हुआ 10-5 किलो सोना है मान लो, और गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि कोई आदमी 25 तोला का सोना अपने ज्यादा घर में नहीं रख सकता, क्यों? तो फला तारीख को सरकारी खजाने में जमा करा दे, और नहीं जमा कराए तो हम चोर हो गए। उसके बाद मुफ्त नहीं, हम नहीं चोरी करने गए नहीं, लेना नहीं देना नहीं, हमने सेल टैक्स इनकम टैक्स कुछ नहीं किया, ये तो बाप दादों का था, तो गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से ही हमें मिला है। बोलो ये कहां तुम्हारा है? तो बिल्कुल असद्भूत है ना, क्यों? तो यहां पर एक तो हुआ असद्भूत व्यवहार में, अब एक सद्भूत। सद्भूत माने क्या? कि शरीर को छोड़ दो, स्त्री पुत्र को छोड़ दो, अपना जो आत्मा है ना उसके द्रव्य गुण पर्याय बस इतना लेना। राजचंद भाई की भाषा में कहते हैं प्रमाण के मर्यादा में आ जा, प्रमाण के बाहर मत जा। ये जो अपना द्रव्य गुण पर्याय है उसमें ही भेद करके समझाना, उसका नाम है सद्भूत व्यवहार। भेद गुण भेद भी हो सकते हैं और पर्याय भेद भी हो सकते हैं, प्रदेश भेद भी हो सकते हैं। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, ये भी व्यवहार है, और आत्मा केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान वाला है, केवल दर्शन वाला है, ये पर्याय है ना, ये भी व्यवहार है, और आत्मा में सद्भूत व्यवहार है, और आत्मा में राग द्वेष मोह है, ये भी सद्भूत व्यवहार है, भले ही उपचरित हो। गुण भेद वो अनुच्चरित, शुद्ध पर्याय का भेद भी अनुच्चरित, और विकारी पर्याय के भेद को बोलते हैं उपचरित सद्भूत व्यवहार में। लेकिन ये है, ये काल्पनिक नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, इसलिए सद्भूत पर्याय में राग द्वेष मोह भी है। भले ही वे आत्मा ना हो, दृष्टि के विषय में शामिल ना हो, लेकिन वो है, इसलिए उनका नाम क्या रखा? सद्भूत। अब ये जो अपना प्रश्न था, चार व्यवहार हो गए ना अपने, दो मुख्य सद्भूत और असद्भूत, एक ने संयोग का ज्ञान कराया और एक ने गुण भेद का ज्ञान कराया। तो जो वो बात कही कि देह के आधार पर स्तुति करना वो तो हुई असद्भूत व्यवहार रहने की स्थिति किसा भाई, और आत्मा के गुणों के आधार पर स्थिति करेंगे ज्ञान दर्शन चारित्र केवल ज्ञान सर्वज्ञता, तो वो होगी सद्भूत व्यवहार नय की स्थिति। वो निश्चय की नहीं होगी ना, अपनी समस्या तो ये थी कि निश्चय स्थिति में आत्मा के गुणों का वर्णन क्यों नहीं किया, सीधा आत्मा के अनुभव को निश्चय स्थिति क्यों कहा, ये प्रश्न था ना कल रात को जो छोड़ा था। मैं चाहता हूं थोड़ा थोड़ा कि मैं जो बात कहता हूं वो आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, आपके ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही, थोड़ा रिएक्शन मेरे को मिलना चाहिए, तो मेरी हिम्मत आगे और गहरी गहरी बात कहने की पड़ेगी। और आप बिल्कुल वितराग भाव से सुनते रहे, ये तो मैं जानता हूं 10-20-25-50 आदमी जो अभ्यासी है उनकी सब समझ में आता है, लेकिन बाकी जनरल पब्लिक की भी समझ में आ रहा है, इसका कोई चिन्ह आप में से मुझे प्राप्त होना चाहिए, आपकी आंखों में, आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, तो मेरे को ज्यादा गहरी बातें कहने की हिम्मत होगी। और यदि मेरे को पता लगा सब ऊपर से जा रहा है तो बातें ही हल्की नहीं करनी पड़ेंगी, मेरे को दिन पूरे करने में मुश्किल हो जाएगी। वैसे मैं समझता हूँ कि आप लोग समझते हैं, क्योंकि निरंतर शिविर होते रहते हैं और आपको मामा जी जैसे मीठा भाई और अच्छे बाबू भाई वगैरह, चंदू भाई वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आपके पास उपलब्ध है, 25-30 वर्ष की बाबू भाई का उत्तराधिकार आपके पास मौजूद है, तो आप समझते ही होंगे, ऐसा मान कर ही मैं बात करता हूँ। चल रहा ना, तो ये ना यानी प्रश्न क्या था कि यदि हम केवली के गुणों के आधार पर स्थिति करते, सर्वज्ञता और वितराजता को वर्णन को अनंत सुख वाले हैं, अनंत ज्ञान वाले हैं, तो वो सद्भूत व्यवहार नय की स्तुति होती, और देह के आधार पर किया वो असद्भूत व्यवहार नय की स्तुति हुई, तो दोनों व्यवहार नय की ही होती, निश्चय नय की स्तुति नहीं होती। ठीक है ना मानो भाई, इसलिए उन्होंने निश्चय स्तुति में केवली के गुणों का वर्णन नहीं किया बल्कि आत्मा के अनुभव को निश्चय स्तुति कहा। ठीक है सुनी भाई, अब एक प्रश्न फिर खड़ा होता है कि तुम्हारे कहने से क्या होता है कि एक केवली भगवान की स्तुति कैसे हुई, कि तुमने अपनी आत्मा की स्तुति कह लो निश्चय, कि तुमने अपने आत्मा के अनुभव को स्तुति कह दिया, क्या अपने आत्मा की स्थिति को एक केवली भगवान की स्थिति कब हुई, उसने तो केवली भगवान की स्थिति का है। ठीक है अमित भाई, 29वीं गाथा पढ़ो आप, अब गुजराती में पढ़ता हूं देखो, पर निश्चय नियोग नहीं दे गुण के बलि तना, दे केवली गुण ने स्तव मार्थ केवली ते स्तव, साधन केवली के गुणों का स्तवन करे तो केवली की स्थिति कहलाए। और 31वीं गाथा में तो केवली के गुण की तो बातें नहीं करते हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई तुम्हारे ज्ञान के गेर भी बनेंगे तो निश्चय स्थिति नहीं होगी। बोलो तब उस समय तो भगवान आत्मा अपना ज्ञान का गेय बनना चाहिए ना, अनुभव के काल की बात है, विस्तार से बात बाद में करूंगा, लेकिन इतना नक्की समझ लो कि निश्चय स्तुति शुद्धोपयोग आत्मानुभूति के काल की बात है, जब आत्मा आत्मा का अनुभव करता है तो उसे बोलते हैं निश्चय स्तुति। तो यहाँ तो केवली के गुणों को स्तमन करना चाहिए, तो यहाँ तो कहते केवली भगवान तेरे ज्ञान के गे बनेंगे तो व्यवहार खड़ा हो जाएगा, वो तो निश्चय नहीं होगा, पर वो व्यवहार असद्भूत व्यवहार खड़ा होगा। क्यों सुनना भाई, असद्भूत क्यों होगा, फिर अब मई की क्लास चलाइए नहीं उधर, पहले चलाई थी ना, आज चलाने वाले हैं। देखो ताराचंद भाई, इन असद्भुत व्यवहार क्यों खड़ा होगा? केवली के गुणों का स्तवन असद्भुत व्यवहार क्यों खड़ा होगा? क्योंकि वो अपन से परिदृढ़ है ना। अभी अभी बताया था ना कि परिदृढ़ के साथ संयोग की जो बात है वो असद्भुत व्यवहार है, और अपने ही गुणों में भेद करना उसका नाम सद्भूत है। तो वो तो परिदृढ़ हो गए ना, वो तो केवली भगवान की, अपन अपने केवली की बात थोड़ी है। अपने आत्मा में ज्ञान दर्शन तात्र का भेद करना, अपनी क्षति पर्याय में सम्मानादि पर्याय, निर्मल पर्याय हो, रागादि विकारी पर्याय हो, उनकी बात करना, भेद करके समझाना, उसका नाम सद्भूत व्यवहार है। रवि भाई ठीक है ना? तो यहाँ निश्चय स्थिति को हम केवली भगवान की के गुणों का वर्णन को निश्चय स्थिति कैसे कह सकते हैं? दो बातें अलग अलग हो गई। एक तो वो परिद्रव्य है इसलिए असद्भूत हो जाता, और दूसरे उनके गुण भेद करके बता रहे इसलिए सद्भूत हो जाता। लेकिन होता तो व्यवहार ही, वो निश्चय स्थिति कैसे होती? इसलिए हमने यहाँ आत्मा के अनुभव को निश्चय स्थिति कहा है। निश्चय स्थिति की एक शर्त और भी है कि निश्चय में से दो द्रव्यों के बीच में बंध बंधक भाव नहीं होता। ये बंध बंधक भाव क्या? एक आदमी करे बंदना और दूसरा आदमी करवाए बंदना, ऐसा निश्चय में नहीं होता। क्योंकि निश्चय में दो द्रव्यों का कोई संबंध ही नहीं होता। कि अभी कहा था ना प्रमाण के भीतर रहो, प्रमाण के भीतर रहो माने अपने द्रव्य गुण पर्याय के भीतर रहो। तो अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय तो अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर है के भीतर, बाहर है ना, तो पर के साथ होते ही तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सद्भूत व्यवहार में तो अपने द्रव्य गुण पर्याय के भीतर घटित होगा ना। क्यों धर्मजनी साहब, सर इनको इसमें समय सार में लिखा है कि अपने आत्मा का अनुभव यही निश्चय से केवली का स्तवन, केवली की स्थिति। तो जन तो केवली की स्थिति का चल रहा है, आत्मा की कहो तो ठीक है कि दो द्रव्य के बीच में बंध बंधक भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस कारण नहीं होता कि निश्चय न से दोनों आत्मा समान है। जब समान है तो कोई किसी को बंधना क्यों करे? एक बात मान लो, समान नहीं भी हो सौमचंद भाई, नहीं होगा कोई सवाल नहीं है, है ही फिर भी, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता हो तो हम किसी के हाथ पैर जोड़े? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है तो फिर बंध बंधक भाव क्यों हो? हम तो समान नहीं है, हम तो कम है, वे महान है, अनंत भगवान अनंत हो गए मान लो, हम नहीं हुए, लेकिन वे हमारा कुछ कर सकते भला? नहीं कर सकते, तो मुखद में हाथ क्यों जोड़े? तो दो द्रव्यों के बीच में बंध बंधक भाव की बात निश्चय नये में बिल्कुल बन सकती नहीं। तो वास्तव में विचार करो तो निश्चय नये में तो स्थिति बंधना नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। फिर भी आप कहो कि निश्चय स्थिति क्या है? तो कहा आत्मा का अनुभव। तो एक इसे केवली भगवान की निश्चय स्थिति क्यों कह रहे हो? अपने आत्मा की कहो। तो वे उत्तर देते हैं कि देखो, पिता की सेवा करना, पूजा करना, ये पिता की भक्ति है कि पिता की आज्ञा मानना पिता की भक्ति है? क्यों? गुरु की आज्ञा मानना गुरु की भक्ति है कि गुरु की सेवा करना गुरु की भक्ति है? हे गुरुदेव आप यहाँ बिराजो, क्योंकि मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं आपकी रोजाना पूजा किए बिना मुंह में पानी भी नहीं दूंगा, 8 घंटा मैं आपकी पूजा करूंगा, चुपचाप शांति से यहाँ बिराजो। कि भैया मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही, एक गिलास पानी मेरे को ला दो पहले, महाराज पूजा करने के बाद पहले आप चुपचाप शांति से बैठो, मुझे पूजा में बहन मत करो। और उन्हें बैठाल के जन्म जा मृत्यु विनाश नाश जलम चढ़ाए लेकिन वे प्यासे मर रहे और उन्हें पानी नहीं दे, तो भगवान के पुण्य का भगत है, उनकी आज्ञा का पालन ये सबसे बड़ी पूजा और भक्ति है कि नहीं है। विकार करना शांति से, अध्याप अपन लोग बैठे हों और हमारे गुरुजी पधारे और उसके खड़े नहीं हों तो हम नालायक, हम सामायिक कर रहे हों और गुरुजी पधारे और उसके खड़े हो जाए तो नालायक के नहीं। सामायिक की बात जाने दो, आप परीक्षा में बैठे हैं, गुरुजी ने आपको साल भर तक पढ़ाया है, प्रश्न पत्र चल रहा है पेपर, और तीन घंटे में आप कुर्सी पर बैठ के टेबल पर लिख रहे हैं और गुरुजी की ड्यूटी लगी है निरीक्षण की, गुरुजी पैदल चक्कर काट रहे हैं क्या? अब गुरुजी आपके पास आए तो आप उससे खड़े हो जाएं कि गुरुजी आप बिरा दो, मैं कैसे कुर्सी पर बैठ सकता हूं आपके सामने कि तू चुपचाप बैठ के लिख, मैं घूमूंगा कैसा, वैसे कैसे हो सकता? वो गुरु का भगत है, फिर प्यास है गुरु जी, प्यास लग रही है, खबर दर शांति से अभी मैं एक गिलास पानी लाता हूँ, गुरु जी लाकर पानी देंगे और वहीं बैठ के शांति से पी ले और लिखता रहे तीन घंटे तक लगातार, तो गुरु जी खुश होंगे कि नहीं, नहीं गुरु जी आप बिरा दो, मैं तो अभी पानी लेके आता हूँ, खुद भी लाता हूँ, आपको भी पिलाऊंगा। बोला प्रभाकर भाई कैसे शिष्य से गुरुजी खुश होंगे कि वो तीन घंटा बैठा रहे लिखता रहे, देखे ही नहीं कि गुरुजी खड़े हैं या बैठे हैं कि क्या कर रहे हैं। ऐसे शिष्य से गुरुजी प्रसन्न होते हैं ना, सच्ची गुरु की भक्ति तो ये है कि मेरा रिजल्ट अच्छा रहेगा तेरा रहेगा, तो बेटा तू पास होगा तो मैं पास होऊंगा, और तू फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, तू गोल्ड मेडलिस्ट होगा तो मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हो गया क्या? तो भक्ति का मतलब क्या, स्वरूप क्या, उसकी आज्ञा का पालना क्या? नहीं, पिता कहता है कि बेटा तू दुकान संभाल ले तो मैं तो फिर धर्म ही धर्म करूं, मीठा भाई के साथ हो जाऊं क्यों, किसी काम में लग जाऊं, और इसलिए बेटे को ट्रेनिंग दी, पूरी ट्रेनिंग दी बेटे को। अब बेटा सामने ग्राहक आया तो उससे बात कर रहा है, कुर्सी पर बैठा है, अब आजकल दुकानों में तो जगह बहुत छोटी होती है ना, बाप आया उठ के खड़ा हुआ, आओ बापूजी आप बैठो, नहीं 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 मैं आपके सामने कह रहा था। अरे बाप को पूछा ही नहीं और उसे पता ही नहीं चले कि पिताजी कब आए और कब वापस चले गए, तो ग्राहक में मशगूल रहे तो बाप खुश होगा, अब इसने दुकान संभाल ली, अब मुझे कोई चिंता की बात, और बाप के आते ही गद्दी छोड़ दे रहे कहीं आप बिरा दो आप बिरा दो आप बिरा दो, तो बात बात में बाप से पूछे तो बाप समझेगा इसके भरोसे दुकान नहीं छोड़ी जा सकती। बोलो तो पिता की भक्ति क्या है, उसे निश्चिंत कर देना है ना, उसके काम को संभाल कर उसे निश्चिंत कर देना, ये सच्ची भक्ति है, क्या तेरे हाथ पैर जोड़ते रहना, ये सच्ची भक्ति है। तो हमारे अरहंत भगवान की भी क्या आज्ञा है, बोलो मनी भाई, कि तुम हमारी पूजा करो भक्ति करो, क्यों ये भगवान की आज्ञा है कि तुम हम पे से भी दृष्टि हटाकर हमें भी ज्ञान का गेय मत बनाओ और अपने आत्मा में लीन हो जाओ, ये उनकी आज्ञा है कि नहीं महाराज मैं आपकी ये आज्ञा नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरा सुपर प्रकाशक स्वभाव खंडित हो जाएगा, मेरा तो पर को जानना भी स्वभाव है ना, चंदा भाई इसलिए मैं तो आपको जानूंगा कि जो तुझे मरना हो तो मर जा, मैं क्या करूं, मैं तेरे से पूछता हूं कि अनादिकाल से तूने अपने आत्मा को नहीं जाना और पर कोई जानने में जिंदगी बर्बाद की, तो तेरा उस वक्त स्व प्रकाशक जो स्वभाव है वो खत्म हो गया क्या? निवेदन में रहा तो बुद्धिपूर्वक जानने की बात है, नहीं जानने की अबुद्धिपूर्वक क्या होता उसकी बात यह नहीं है, तूने बुद्धि पूर्वक पर पदार्थों को ही जानने में जिंदगी खराब की और अपने आत्मा को एक क्षण भी नहीं जाना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल के अनुभव में आ रहा है उसकी ये बात नहीं है, उससे आगे लिखाना तो भी ये आत्मा मैं हूँ
ऐसा भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए तूने आत्मा को जाना ही नहीं। तो ऐसा जो नहीं जाना है, अनंत काल बीत गया पर को जाने बिना या अपने को जाने बिना, और आत्मा का जो स्व प्रकाशक स्वभाव है वो अनंत काल तक नहीं जानने पे भी जिंदा रहा कि नहीं रहा, क्यों सुमन भाई? तो एक अंतर मुहूर्त को यदि पर को नहीं जानेगा तो पर के जानने का तेरा स्वभाव समाप्त हो जाएगा। ये कहां से लाया? स्वभाव उसे नहीं कहते हैं जो ऐसे एक एक क्षण में बदल जाए, स्वभाव तो उसे कहते हैं जो अनादि अनंत कभी भी न बदले। तेरा स्वभाव क्या कुत्ते की पूंछ से भी कमजोर है? वो भी 12 वर्ष तक पुंगी में डालो और उसके बाद निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। कितना कमजोर है स्वभाव, जिसकी चिंता करनी पड़े, जिसकी रक्षा का विकल्प करना पड़े, उसका नाम स्वभाव नहीं है। वो तो जो स्वयं सुरक्षित है उसका नाम स्वभाव है। तो ये कहते हैं भगवान कि मेरा तो सच्चा भगत वो ही है, कौन, कि जो मेरे को जानना बंद करके अपने भगवान आत्मा को जाने, उसको ही मैं अपना नंबर एक का भगत मानता हूँ। इसलिए निश्चय स्थिति कौन, कि जो भगवान को की बात करना तो बहुत दूर, भगवान के गुणों की चर्चा करना तो बहुत दूर, भगवान के गुणों में से उपयोग हटाकर अपने आत्मा में उपयोग ले जाए, भगवान का नंबर एक का भगत वही है। भगवान की कोई बात नहीं और भगवान की भक्ति हो गई तो अपने मन से अर्थ कर रहे हो, कोई शास्त्र का आधार है तुम्हारे पास, तो समय सार है ना? अरे समय सार तो ठीक, भाई समय सार को तो भले आदमी शास्त्र ही नहीं मानते। हम कह रहे कि समय सार का ही तो अर्थ कर रहे हैं हम, कोई शास्त्र का प्रमाण है तुम्हारे पास? मैंने कहा है। बोलो, ऐसे शास्त्र का प्रमाण देवे कि पेज निकाल के दिखाना ही नहीं पड़े तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? संदू भाई देखो बता देते हैं, मुनिराज के 6 आवश्यक होते कि नहीं होते? कौन कौन से होते हैं? समता धर बंधन करे नाना थुति बनाए, आता ना? तो उन्होंने रोजाना भगवान की स्तुति करना और वंदना करना, ये 6 आवश्यक में मुनिराज के है कि नहीं? रोजाना भगवान की स्तुति करना ये मुनिराज के 6 आवश्यक कार्यों में है। अब बाहुबली का जमाना चल रहा ना अभी महामस्त का अभिषेक का, तो बाहुबली 1 वर्ष तक आत्मा के ध्यान में खड़े रहे, बेलें चढ़ गई, तो वो रोजीना भगवान की स्तुति करते होंगे, वाणी से करते होंगे, काया से नमस्कार करते होंगे, केवल ज्ञान के धनी आदिनाथ बिराजे से साक्षात, तो भी वहां नमस्कार करने गए थे क्या? परोक्ष नमस्कार किया था? अरे कोई मन से कोई 2 शब्द बोले थे आदिनाथ के बारे में? तो वह उनके 2 आवश्यक तो कम हो गए, वंदना करना और स्तुति करना। तो ये पक्के सच्चे मुनिराज नहीं थे क्यों? और उनके 28 मूल गुण भी होते हैं ना मुनिराजों के, उनमें 2 मूल गुण वो भी है, इत बार दिन में ले आहार खड़े अल्प निज पान में, कि दिन में 1 बार आहार करना, खड़े खड़े करना, अल्प करना, अपने हाथ में करना, क्यों आते कि नहीं आते? तो उनने तो आहार ही नहीं किया तो 2 मूल गुण खंडित हो गए। जब आहार नहीं किया तो खड़े खड़े कहां किया, अल्प कहां किया, अपने हाथ में कहां किया, जब किया ही नहीं तो अगर भाई तो क्या हुआ? और देखिए ईरिया समिति मुनिराज को होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पंडित भाई से क्या बात करते हो, ईरिया समिति नहीं होनी चाहिए? कि 4 हाथ जमीन देख के चलना, इसका नाम ईरिया समिति है ना? तो बाहुबली तो चले ही नहीं, तो 4 हाथ जमीन देख के चलने का सवाल कहां रहा? आंख ही नहीं खोली तो 4 हाथ जमीन दिखेगी कैसे? 1 बरस तक ईरिया समिति गायब। और भाषा समिति क्या है? हित मित्र प्रिय वचन बोलना, तो बाहुबली तो 1 बरस तक बोले ही नहीं, तो इतने प्रिय वचन कहाँ बोले होंगे, तो भाषा समिति नहीं है। और तीसरी कौन सी है, ऐसना समिति, जानते हो ऐसना समिति क्या होती है, 32 अंतराय और 46 दोष टालकर आहार लेना, आहार को निकले ही नहीं तो कहाँ अंतराय ताले होंगे, कहाँ 46 दोष ताले होंगे, ऐसना समिति गायब। और आदान निक्षेपण समिति, जानते हो क्या बोलते हैं, वो पीसी का मंडल है ना, उन्हें देख के रखना, देख के उठाना, कोई जीव ना मर जाए, है ना, तो उन्होंने पीसी का मंडल उठाया ही नहीं, रखे ही नहीं, एक जगह खड़े हुए तो खड़े हुए। और प्रतिष्ठापना समिति किसे कहते हैं जानते हो, मन मूत्र का क्षेपण भी निर्जंतु स्थान देख कर करे, निर्जंतु अनविलोक कर मन मूत्र लेसम परिहरे, क्यों तो बोलो, पांचों समिति गायब हो गई भाई साहब। तो बाहुबली सच्चे मुनि थे या नहीं थे, कि क्या पता आगे क्या बात करते हो, पता नहीं है। अरे सच्चे थे, पक्के सच्चे थे, कि क्या प्रमाण है कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया, यदि सच्चे मुनि नहीं होते तो केवल ज्ञान होता क्या, क्या प्रमाण है ना। नहीं नहीं, आप तो बहुत पुराने जमाने के थे इसलिए सच्चे होंगे ही, पुराने जमाने और नए जमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराने जमाने का तो मारीच भी था, वे 4000 राजा भी थे जो आदिनाथ के साथ दीक्षा ले गए थे, वे सब नकली थे क्या नहीं थे। सवाल पुराना और नए जमाने से नहीं है, सवाल है उन्हें केवल ज्ञान हो गया, इससे बड़ा और प्रमाण तेरे को क्या चाहिए कि वो असली थे। और उनके 5 समितियों का पालन कहाँ था, था कि नहीं था, कि वो तो व्यवहार समिति है, निश्चय समिति का पालन था। और निश्चय समिति क्या है, कि आत्मा का अनुभव। निश्चय क्रिया समिति क्या है, कि आत्मा का अनुभव। भाषा समिति क्या है, कि आत्मा का अनुभव। नियम सार में देखो ना, प्रत्याख्यान आत्मा का अनुभव, प्रतिक्रमण आत्मा का अनुभव, त्याग आत्मा का अनुभव, जो कुछ भी है वो सब आत्मा के अनुभव में सब समाते हैं। यानी हाथी के पांव में सबके पांव समाते हैं, एक परमावश्यक काम में सब आवश्यक काम समाहित हो जाते हैं। और वो परमावश्यक काम क्या है, आत्मा का अनुभव। जब बाहुबली भगवान का आत्मा का ध्यान इरिया समिति हो सकता है, जब बाहुबली भगवान का आत्मा का ध्यान भाषा समिति हो सकता है, क्यों तो उनका आत्मा का ध्यान स्तुति और वंदना क्यों नहीं हो सकता। इसलिए उनके 6 आवश्यक थे, तो निश्चय स्तुति आत्मा के अनुभव रूप में होती है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण प्रथमान योग में भी मिल गया कि नहीं। समय सार में तो है ही, नियम सार में तो है ही, उसका क्या कहना। लेकिन बोलो दुर्भाग्य से हमारे शास्त्र हो गए, क्यों बोलो है प्रथमान योग में कि नहीं। चलो ध्यान की अवस्था में सारे आवश्यक, कोई भी आवश्यक आवश्यक नहीं रहता है, अपनी सुबह से शाम तक की दिनचर्या होती है कि नहीं, और वो दिनचर्या का पालन आवश्यक है कि नहीं, रोजाना दुकान पर जाना आवश्यक है कि नहीं, मंदिर आना, पूजा करना, पाठ करना, भोजन करना, सब आवश्यक है कि नहीं। लेकिन 2-5 लाख का कमाई देने वाला ग्राहक आ जाए तो सब आवश्यक एक तरफ रखे रहते हैं कि नहीं, अति आवश्यक के भेद में सब समाहित हो जाते हैं कि नहीं, कि तुम आज दुकान पे ही नहीं आए, कि नहीं आए हम दुकान पे ही थे, कि हमने तुम्हें देखा ही नहीं, कि दुकान पे काहे के लिए आते हैं, कमाने के लिए, 100-200-500 कमाते, यहाँ तो 5 लाख कमाए, तो दुकान पे आए कि नहीं आए बोलो, समझे ना। जैसे वो परमावश्यक काम में सब आवश्यकों की छूट हो जाती है, ऐसे ही आत्मा का अनुभव शुद्ध रूप आत्माओं का लोकन एक ऐसा परम आवश्यक है कि जिसमें सारे धर्म समाहित है, इसलिए आत्मा का अनुभव ही निश्चय स्थिति है। और केवल ही गुणों के आधार पर बात करते तो संधि भाई, उनमें ज्ञान है, दर्शन है, तारित्र है, सुख भी है, सर्वज्ञ है, परमात्मा है, ऐसा कहते तो असद्भूत व्यवहार का निषेध होकर सद्भूत व्यवहार में खड़ा होता, निश्चय में खड़ा नहीं होता। और यहाँ तो निश्चय में खड़ा करना है, इसलिए उन्होंने आत्मा के अनुभव को निश्चय स्तुति कहा है। चाहे देह के गुणों के आधार पर स्तुति करें, आत्मा के गुणों के आधार पर स्तुति करें, दोनों स्तुतियां व्यवहार स्तुति ही है। नियम सार में व्यवहार स्तुति के लिए एक गाथा आती है, वो कुंड कुंड शतक में भी अपन ने संकलित की है। उसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। क्या लगा? बहुत ऊंची बात है। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, जो व्यक्ति मोक्ष चले गए उनकी, माने सिद्ध भगवान की। प्राकृत भाषा में लिखा है मुक्ति गयम पुरुषाणम, ऐसा है मोक्ष में गए हुए पुरुषों की। और भक्ति करे गुण भेद से, उनके गुणों का भेद, ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत सुख अनंत वीर, ये परम भक्ति कही है, उसे परम भक्ति कहते हैं। तो परम भक्ति तो निश्चय भक्ति होगी ना, नाम तो लिख लिया परम भक्ति मामा है। यदि वो जिन सूत्र में व्यवहार से नहीं लिखा होता तो हम निश्चय मान लेते। वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से, चौदह व्यवहार से, एक तो वे हमसे परद्रव्य है इसलिए असद्भूत व्यवहार हो गया, और दूसरे गुण भेद से भक्ति कर रहे हैं इसलिए सद्भूत व्यवहार हो गया, निश्चय तो आया ही नहीं। तो निश्चय से भक्ति क्या है? तो वे अपने आत्मा का अनुभव, ये तो अपने आत्मा की भक्ति हुई, उनकी निश्चय से भक्ति क्या है? कि उनकी तो निश्चय से भक्ति होती ही नहीं, इसी को उनकी निश्चय से भक्ति कहते हैं। वास्तव में तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में भक्ति का और भगत का कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनकी ही आज्ञा यही है कि सारे जगत के जीवो एक आत्मा में समा जाओ, मज्जन्तु निर्भव ममी सममेव लोका। 38वीं गाथा के बाद जो कलश है ना, उसमें आया ना, हे सारे जगत के जीवो तुम अपने आत्मा का अनुभव करो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अपने पूज्य गुरुदेव श्री थे और उन्होंने अपने को वीतरागी तत्व ज्ञान दिया, देश में लब्धि मिली, और आज 4 लाख 5 लाख जितने भी सारे हिंदुस्तान में उनके भगत हैं देश विदेश में, वो खुद स्वामी जी इस व्यक्ति को अपना एक नंबर का भगत स्वीकार करेंगे? विचार करना क्यों, जो उनके ऊपर बहुत बढ़िया किताब लिखेगा, हजारों पेज पे बोलेगा, रोजीना उनके गुणगान करेगा, उसको उनने जो मार्ग बताया है, भले ही उसने उनके दर्शन नहीं किए हो, उनके जाने के बाद उनकी वाणी टेप से सुनकर सांस से पढ़कर और वो बात पाई हो और आत्मा का अनुभव कर लिया हो, तो वे उनको ही अपने नंबर एक में रखेंगे। मैं तो कहता हूँ नंबर एक में नहीं, उनको ही मानेंगे, दूसरों को मानेंगे ही नहीं। इनको क्या मानना, सारी जिंदगी बता दी और असली काम नहीं कर पाया, इनको असली और नकली में किनमें गिनने की जरूरत है? बोलो आप, विचार करो कि जो उन्होंने कहा है वो उसको कर ले करके उन्हें दे, उन्हें चाहिए क्या तुमसे? तुम अपने आत्मा का अनुभव कर लो और तुम सुखी हो जाओ तो ही तुम्हारा नंबर एक के लिस्ट में आ जाएगा नाम। उनको देने की कुछ जरूरत क्या है? नहीं साहब, हम तो कृतज्ञ नहीं बनेंगे, हम तो कृतज्ञ हैं, हम तो छह दफे नाम ले। लेकिन नाम लेने को कौन मना करता है? ना खोल लो, खूब लो ना। लेकिन तुम्हारे नाम लेने से भी खुश होने वाले नहीं है। मैं पूछता हूँ कि तुम नवोकार मंत्र तो रोजाना 108 दफे बोलते हो ना, तो पंच परमेश्वरी का नाम तो लेते हो। उन पंच परमेश्वरी से पूछो तो तुम्हारी गिनती उनके यहाँ क्या है? गुरुदेव का कोई नाम लेता है और कोई नहीं लेता है, ये झगड़ा खड़ा होगा। लेकिन पंच परमेश्वरी के नाम लेने में तो कोई पीछे नहीं है ना मीठा भाई। तो पंच परमेश्वरी का भगत तो गुरुदेव के भगत से थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए ना। लेकिन सारी जिंदगी लिया और वे तुम्हारा लिस्टिंग में नाम ही नहीं, अंतिम में नाम भी नहीं रखा उन्होंने। फिर ये कहते हैं कि मेरा नाम क्या रखता है, इसे क्या होने वाला है? क्यों? तू अपने आत्मा का अनुभव कर तो तेरा कल्याण होगा। वे तो उसका निषेध करने वाले हैं। मैंने तो भगवान महावीर के जीव का प्रकरण आता है ना, कहा शेर की पर्याय में दो चाय निधारी मुनिराज आकाश से उतरे और उसे उपदेश देने लगे, तो वो आंखें फाड़ फाड़ करके जो मेढे की भांति उसे देखने लगा। आता ना, तो मैंने तुम्हारे बात से लिखा है कि मुनिराज के मुख से क्या उपदेश लिखा है निकला। और बातें तो बहुत है, मैं लंबी चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने एक बात को वहां लिखा कि आंखें फाड़ फाड़ के मेरी तरफ क्या देखता है, तू अपने आत्मा को देख तेरा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने क्या उपदेश दिया कि मेरे को देखने से तेरा कुछ होने वाला नहीं है? लेकिन हमारी क्या पोजीशन है? अंदर पे छाती पे हाथ रखकर विचार करो। मैं अभी जरा कहूं, समझ भाई, तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे तुम्हारे मराड़ वाले। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसे कह रहे थे। नहीं नहीं क्या थे, कौन कह रहा था, क्या कह रहा था? मैंने कहा नहीं नहीं मुझे अभी याद नहीं है। नहीं नहीं पंडित बना दो, बना दो चाय पियो, ऐसी क्या बात है, जल्दी चाय बनाओ पंडित जी को। पहले तो तुम चाय भी पूछ नहीं रहे थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे ना वो सुनना है। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, ऐसी बुराई कर रहे थे। ये कह रहे थे रमन भाई, नमन अपने को क्या समझता है? अच्छा, ऐसा उनकी ये हिम्मत, मैं एक एक को देख लूंगा, मैं एक एक को देख लूंगा। अरे भाई साहब, एक एक को देखने से तेरे को क्या मिलेगा? एक को देख लेना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। एक एक को देखने से भगवान की आज्ञा है भाई साहब। भगवान की आज्ञा ये है कि सारे जगत से दृष्टि हटाओ, सारे जगत से हटाओ नहीं, मेरे पैसे भी हटाओ, मेरा पीछा भी छोड़ो, कोई किसी के पीछे नहीं, सब अपने अपने आगे हो जाओ। हम तो महाराज आपके पीछे, पीछे का काम क्या? हम तो भाई उन गुरुदेव के शिष्य हैं कि जो इतने उत्साह में आ जाते थे कि वो कहते थे कि जब मैं तीर्थंकर होऊंगा और जब मैं दीक्षा लूंगा तो उस वक्त नमः देव्या कहकर अपने फला शिष्य को नमस्कार करूंगा। इतनी बड़ी महानता कोई सोच सकता? समझ में आ गया होगा? मैं नहीं समझता हूँ ज्यादा अर्थ करने की जरूरत है। कल्याण भाई क्यों? क्योंकि मुझे तो तीर्थंकर होकर मोक्ष जाना है, तो अभी जाकर के स्वर्ग में फंसूंगा तो सागरों लगेंगे वहां। क्यों? अरबों बरस लग जाएंगे तो नहीं, फिर आऊंगा और यहां होऊंगा दो तीन भव में, जितने भव भी, चार भव जो भी हो। इतने काल तक ये सब जीव क्या यहीं बैठे रहेंगे? इनमें से बहुत मोक्ष में चले जाएंगे। तो मैं उन सबको जब तीर्थंकर हो गए दीक्षा लूंगा तो नमस देव्या करूंगा तो उनको मेरा नमस्कार हो जाए। हृदय की विशालता की कोई सीमा है, कोई हद है? मेरे सिद्ध मेरे से पहले पहुंच जाने। एक प्रश्न पूछूं, अपने 23 में भगवान पारसनाथ है और 24 में महावीर है, पहले तीर्थंकर प्रकृति किसने बांधी थी, पारसनाथ ने जो महावीर ने? मतलब गुरुदेव की बात सिद्ध करनी है इसलिए बात कह रहा हूं कि पहले और लोग चले जाएंगे इसकी बात कर रहा हूं मैं। बोलो धर्मराज जी, किसने बांधी थी? महावीर ने पहले बांधी थी और एक दो वर्ष पहले नहीं, 7 सागर पहले। सागर समझते कितना होता है? तो भाई कि कौन से शास्त्र में लिखा, तो पेज नंबर बताने वाला शास्त्र की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। गाथा नंबर और पेज नंबर पूछना हो तो पूछना बीटा भाई से। मैं तो आपको बिना पेज का बिना गाथा का नंबर बताता हूँ कि भगवान पारसनाथ बामा माता के पेट में कौन से सुरक्ष आए थे। बरे स्वर्ग प्राण ते को बिहाय सुबाम माता पूरे भये। पूजा में लिखा था नहीं, मैंने 12वें स्वर्ग से आए थे। और महावीर कौन से स्वर्ग से आए थे? 16वें स्वर्ग से आए थे। तो 16वें स्वर्ग की आयु होती है 22 सागर और 12वें की होती है 15 सागर करीब। तो 15 सागर और 22 सागर में कितना फर्क है? 7 सागर का। तो 7 सागर पहले, समझ गए ना? यहाँ 3 भव पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधते, पहले जो मनुष्य होता है ना वहां शुरू करते हैं। तो जिस भव से वो 12वें स्वर्ग गए थे उनने उस भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, किन्ने? पारसनाथ ने। और वे जिस भव से 16वें स्वर्ग गए थे उनने तब बांधी। और दोनों में तो 250 वर्ष का फर्क है। यहाँ तो ये 7 सागर कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे कि आगे को? यहाँ तो 250 वर्ष तो कुछ कीमत ही नहीं रखते ना। तो पारसनाथ महावीर ने 7 सागर माने अरबों वर्ष पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, लेकिन उनने जरा ज्यादा पुण्य कर लिया तो 16वें स्वर्ग में जाके फंस गए। समझ गया ना? और इन्होंने जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो जरा थोड़ा कम पुण्य किया तो 12वें स्वर्ग में ही गए, तो जल्दी तीर्थंकर हो गए। ख्याल में आया नहीं? बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधी और उसके पहले आगे तीर्थंकर हो गए तो वो 16वें स्वर्ग का इंद्र भले ही यहाँ आए नमस्कार करने चाहे नहीं आए, लेकिन वहां बैठ के तो पारसनाथ को नमस्कार करता होगा कि नहीं? तो भैया एक ज्यादा पुण्य बांधना तो और अधिक काल तक संसार में रखने की बात है। वो 14 स्थान में रहना पड़ेगा ना ऊपर, तो सागरों परिंद जिसे एक दिन नहीं पुसाता, जो रोजाना ऐसी भावना भाता है कि वो देने कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं। क्यों? जिसके हृदय में संयम की चटाचटी लग रही है, संयम धारण कर न सके ते धारण की उर चटाचटी, ऐसी भावना जिसकी निरंतर अंदर में लगी हो और वो सागरों पर्यंत 4थे गुण स्थान में रहने के लिए बाध्य हो, ऐसी पर्याय में जाना पसंद करेगा? अरे वो तो यही था 4था गुण स्थान। तो कोई भी लड़का, किसी का लड़का 10 साल तक 10वीं क्लास में रहे तो आप पसंद करेंगे? 1 साल से दूसरी साल रहे तो आप गालियां बकने लगेंगे, 3री साल रहे तो पढ़ाई बंद कर देंगे। क्यों? माने भाई बैठ गए स्टील की दुकान पे, फिर तेरे पढ़ना लिखना नहीं है तो मत जा, काहे को कॉलेज में समय खराब करता है। और वो चौथी क्लास में ही 33-33 सागर पर एक क्लास में ही रंगमात्र भी तरक्की नहीं, क्यों पांचवी क्लास में जावे ही नहीं, गुणस्थान ही नहीं बदले। वो आत्मा के अनुभवी, आत्मा के लिए तरसने वाले ऐसी जगह जाना क्यों पसंद करेंगे? ऐसा पुण्य में क्यों बांधना चाहेंगे? लेकिन क्या करें उस शुद्ध भाव के साथ जो गुरुदेव की भाषा में आत्मा जला था ना, अरे वो शुद्ध भाव हो गया था, उसके फल में जाकर के उगल गया। तो गुरुदेव फरमाते थे कि मैं तो सड़क में जाने वाला हूँ तो वहां सागरों लग जाएंगे, इससे तो दादा सैनिक अच्छे घबराना नहीं, 84,000 वर्ष में तो निपट जाएंगे, पर आगे तीर्थंकर होके मोक्ष चले जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो सबसे कम काल उनको लगेगा जल्दी से जल्दी मोक्ष जाने में होगी। भाई कोई भी पहले स्वर्ग में भी जाके फंस जाए तो सागरों से कम में तो कोई बात ही नहीं है। 84,000 वर्ष में आकर यहाँ पहले तीर्थंकर हो जाएंगे कहीं महापद में, और उसके बाद अनंत सुख अनंत काल तक के लिए। तो 84,000 वर्ष तक थोड़ा सा तकलीफ भी भोग ली प्रतिकूलता की, सन्नत दर्शन तो है, क्या फर्क पड़ता है? उनका गुरुदेव का विशाल दृष्टिकोण, जाओ ना जाओ मेरे पहले ही निकल जाओ, मुझे तो देर है, मैं तो फंस गया हूँ, तुम कहाँ देरी करते हो, जाओ आत्मा का अनुभव करो। तो एक देव का सच्चा भगत है ना, तो कहते अनंत भगवान का भी सच्चा भगत वो ही है जो अपने आत्मा का अनुभव करे।